उनके नियंत्रण में रज कार्य करता है। तमोगुणी मनुष्यों की, तमोगुणी कार्यों की जब प्रवृत्ति अधिक होती है तो प्रवृत्ति अधिक से होती है और तमोगुण उनका सरदार उस समय रहता है। तो जब ऐसी अवस्था जगत की होती है उसका नाम कलियुग है। इसके बीच में ही जैसे दिन में कई बार, घंटे में कई बार, वर्ष में कई बार ये सत्वगुण तमोगुण बढ़ते रहते हैं, इसी प्रकार कलियुग की तमोमयी स्थिति में भी कभी कभी कहीं कहीं पर किसी किसी में सत्व की वृद्धि होती है। तब वहाँ पर सात्विक प्रकाश, उज्ज्वल शुभ कर्म, पवित्र भाव देखने में आते हैं। हमेशा चलता रहता है। जब सात्विक प्रवृत्ति अधिक होती है उस समय अशुभ कर्मों का प्राय लोप सा हो जाता है। कहीं कहीं कहते हैं राम राज्य में ये आलंकारिक भाषा ही नहीं, वास्तविक चीज ऐसी मानते हैं कि दंड के नाम पर सन्यासियों के दंड थे। दंड तो कोई अपराध करे तब न हो, पर वहां पर भी राजसी में ये तामसी प्रवृत्ति हुई। कैकेयी के मन में तामस आया, मंथरा के प्रेरणा से तमोगुणी वृत्ति हुई, लोभ पैदा हुआ, लोभ प्रवृत्ति आरंभ क्रम नाम समस्या। ये रजोगुण के स्वरूप हैं। तो राम को वनवास और वहीं पर भरत अत्यंत शास्त्री की वृत्ति, तो उस जमाने में भी यह सब होता रहता था। तो जब शास्त्री की वृत्ति अधिक होती है तब उपनिषद में आता है, राजा ने कहा तुम्हारे हमारे यहाँ से आप क्यों नहीं लेते, हमारे राज्य में चोर है ही नहीं, हमारे राज्य में कोई शराब पीने वाला है ही नहीं, हमारे राज्य में फिर अनाचारी दुराचारी लोग तो होते कैसे, है ही नहीं यहाँ तो घोषणा करने वाले। एक ऐसा वर्णन आता है पुराण में कि एक राजा का शायद काशी राज थे, उनके राज्य में निष्पाप कर्मों का सर्वथा अभाव हो गया और इतना पुण्य फैला, इतने पुण्य जनी लोग हो गए कि सबके पितर भी तर गए। नवीन दुष्कर्म होना बंद हो गया और पुराने जो दुष्कर्म का फल भोग रहे थे नरकों में उनका प्राण हो गया, तो नरक का काम बंद हो गया, नरक लोक का काम बंद हो गया। तो वहां पर कोई नया आए नहीं, पुराना कोई रहा नहीं, जेल खाने में कोई नया कैदी ना आवे, पुराने सब छूट जाए तो जेल वाले क्या करें, सर कोई काम ही नहीं रहा। तो यमराज ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज हमारा तो महकमा बंद हो गया, कोई रहा ही नहीं, मैं कोई कोई पहले का है और नया कोई आता नहीं है, तो हम लोग सब ऐसी बैठे में सारा काम ठप हो गया हमारा। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई जब तक इस राज्य, इस राजा का शासन है तब तक तो यही रहेगा, जब तक इस राजा का शासन है तब तक तो यही रहेगा, इसके बाद फिर दूसरे राजा आएंगे तब देखा जाएगा। राजा ही काल के कारण होते हैं, जैसे राजा वैसा प्रजा, वैसी प्रजा, तो उस समय तो तुम्हारा काम बंद ही रहेगा। ये योग था, ये योग था, जहां पाप करने वाले लोग रहे नहीं, पाप रहा नहीं। और ये भी एक युग है आज कि हम अपने पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि भाई पाप तो जीवन में रहता है। निष्पाप आदमी, सर्वथा निष्पाप आदमी जगत में बहुत थोड़े रह गए। स्वाभाविक सहज पाप की प्रवृत्ति और पाप में से घृणा निकल गई, ये होता है। पहले पाप से जब घृणा होती है, भय होता है, तब आदमी पाप नहीं करता। और जब भय घृणा निकल जाती है तब फिर पाप की उपेक्षा हो जाती हो गया तो क्या है। और जब उसमें आसक्ति हो जाती है तब जान बूझ कर वो नया नया पाप करता है। और जब पाप में गौरव बुद्धि हो जाती है फिर तो कहने का है, फिर तो पाप करके आदमी बुरा काम करके आदमी घमंड करता है कि मैंने ऐसा किया देखो मैं सफल हूँ। तो इस ये स्थिति जब जगत की होती है तो ये बड़ी भयानक स्थिति होती है, क्योंकि सभी के पाप में प्रवृत्ति और पाप में प्रवृत्ति जिनकी उनका समाज में विशेष मान आज होता रहा, आज भी ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। किसी प्रकार से भी किसी के पास पैसा आ जाए तो समाज उसको पूछता है ये कैसे आया, ये नहीं देखा जाता। ये खुली चोरी डकैतियों का थोड़ा बहुत वो अभी तक दंड का विधान है तो भी जितना दिखाई हो उतना असली नहीं। चोरी भले होते रहेगा रिपोर्ट में रहेगा और कोई कोई बोला नहीं तो कोई चोरी कोई आपत्ति नहीं है, ये थोड़ा बहुत है। लेकिन मानसिक चोरी, गुप्त चोरी, कागज कलम की चोरी कितनी बढ़ रही है तो ठिकाना है। जहाँ ये चीज थी व्यक्ति व्यक्ति ने समाज के एक एक आदमी ने दूसरे का हक हमारे पास आ न जाए, दूसरे का स्वत्व हमारे यहाँ आ न जाए, हमें कहीं पर भी अपने बही खाते में झूठ न लिखना पड़े, ये इस प्रकार की एक चीज थी। अब वो चीज मानी उठ गई। पहले जमाने में ये चीज थी, सारे महात्मा संत लोग सोचा करते थे कि भाई अमुक का अन्न खराब है उसका नहीं खाएंगे, राजा का नहीं खाएंगे, अमुक का नहीं खाएंगे, अमुक का नहीं खाएंगे, अब किसका खाएं। अब ढूंढना पड़ता उल्टा था कि अमुक अमुक है उनके नहीं खाएंगे और सब अच्छे हैं, अब किसका खाएं ये देखना पड़ता है, कौन अच्छा ये जांचना मुश्किल। क्योंकि ये जब तक हाथ से किसी वस्तु को लेते थे तब दूसरी बात थी, अब तो मन से लेते हैं, बुद्धि से लेते हैं, कौशल से लेते हैं, क्रिया से लेते हैं, योजनाएं बनती हैं लेने की इस प्रकार से, और उसमें पाप बुद्धि तो है नहीं, उसमें गौरव बुद्धि, उसमें गौरव बुद्धि उसमें होता है कि ये बड़ा अच्छा हो रहा है और उस उनका फिर समाज में मान होता है। तो समाज में जब चोर पूजा बढ़ती है, चोर पूजा होने लगती है, चोर पूजा बढ़ती है तो समाज चोर बन जाता है। जब दुविचार पूजा होती है समाज दुविचारी हो जाता है, जब अनाचार पूजा होती है तो समाज अनाचारी हो जाता है। और बढ़ती क्योंकि सबकी दृष्टि रहती है ना कि मैं चोरी करके मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया तो आप सब मेरा मान करेंगे, समाज में भी मैं अग्रणी होऊंगा, राजनीति में भी मेरा विशेष स्थान होगा, संत महात्मा भी मेरे पास आएंगे, मैं जाऊंगा तो मेरा विशेष मान करेंगे, मैं समाज का आगुआ। तो और लोग उनके पास नहीं वो कर रखेंगे कि अपने भी ऐसी बनो। स्वाभाविक बात ये विद्याचर के शिष्य प्रमाण थे, भगवान ने कहा कि भाई मैं ये अतमृत होकर के सावधान होकर के ये वैध कर्म क्यों करता हूँ। तो भगवान ने बताया कि समाज में जिसको श्रेष्ठ मानते हैं उसकी लोग नकल किया करते हैं और उसके आचरण को उसके वचनों को प्रमाण मानकर उसी के अनुसार चलते हैं। तो मैं श्रेष्ठ माना जाता हूँ, मैं यदि कर्म न करूँ, यदि हम न वर्ते जात कर्म केन्द्रत मन वर्तमान वर्तन के मनुष्य आता सर्वभा इच्छुरो का अनुकुरान कर्म चेदम कृषिकता संगा प्रवाह। यद्यपि मुझे कुछ कुछ आवश्यक नहीं माना जाता मैं बात कर दूँ वर्ते कर्मी, मुझे कुछ ऐसी वस्तु अप्राप्त नहीं है जिसको प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़े, परंतु यदि मैं न करूं अतंत्रित हो करके सावधानी के साथ तो मेरी देखा देखी लोग भी छोड़ दें, शुभ कर्मों का विलोप हो जाए, कर्म किए बिना आदमी रहे नहीं, अशुभ कर्म हो, प्रवृत्ति हो गई, चाहे कुप्रवृत्ति हो चाहे सुप्रवृत्ति हो, यदि कर्म न करूं सावधानी के साथ मेरी देखा देखी सत्कर्म को लोग छोड़ दें, असत कर्म सारे लोगों को उत्सव, जब समाज में अगुआ आदमी जो काम करता है सब लोग स्वाभाविक उसके नकल ही करते हैं, तो साथ देखिए चाल देखिए, मुसलमानी जमाने में भी मुसलमानी पोशाक आई वैसा रूप रंग लगा, मेरी जमाने में हेडकोट पतलून लटकाई आ गई, गांधी जी का जो प्रभाव हुआ तो गांधी टोपी कुर्ता आ गया, इसी प्रकार ये मामूली बातें हैं संसार में, लेकिन इसीलिए ये समाज जो है ना, पशु में समाज नहीं है, मनुष्य में समाज है, समाज का अर्थ ये कि संगठित वो रहें और उनमें बुराई ना आने पाए, मनुष्य में इसकी देख रेख रहती रहे, तो जब समाज ही चल कर हो जाए तो समाज से व्यक्तियों को लेकर के ये फिर वो क्या है कि सारे व्यक्ति फिर उसकी देखा दे, तो समाज में चोर पूजा दुभिचार पूजा अनाचार पूजा ये जब आरंभ हो जाती है तब ये चीज़ें बढ़ती हैं, तब मनुष्य की प्रवृत्ति और भी कलुषित कामों की ओर जाती है। करो एक तो ये मन में कि भाई किसी भी दूसरे की चीज हमारे पास आ न जाए, भाई के सगे भाई के बगीचे में से बिना कहे लिखित मुनि ने एक फल तोड़ दिया, महाभारत की कथा, उसको फिर दोनों भाइयों ने ही बड़े शांति और प्रेम के साथ निर्णय किया उस कर्म को कि चोरी है। आप हम सलाह करके ऐसी बात नहीं कि भाई ने एक फल लेने के लिए उस पर चोरी का इल्जाम लगा, दंड की उस पर मालिश की हो, पुलिस ने रिपोर्ट की हो, या उसने नाराजगी के क्या हुआ फल ले लिया, उसने भाई इतना कहते हैं कुछ नहीं, उन्हीं के मन में स्वयं आई, भाई के मन में भी आई कि हमारे घर में ये काम करते हो गया, जब बंटवारा हो चुका था तो बिना कहे लेते थे, तो दोनों ने निर्णय किया कि चोरी है, तो जो चोरी माने जो स्मृतिकार जो हम कर्म को चोरी बताए तो स्वयं उसका अगर दंड न भूलें तब तो लोगों के लिए चोरी हो गई, अपने लिए ही नहीं, अपने लिए तो कोई कुछ नहीं माने, लोगों को उपदेश करो सच बोला करो, चोरी न किया करो, झूठ न बोला करो, अमुक का काम न किया करो, स्वयं न करते रहे, इसका नहीं अर्थ नहीं होता, तो ये जितने स्मृतिकार अपने हुए है ना, बड़ी विशेषता ये इसीलिए स्मृतिकार हैं कि पहले वैसा बनते थे तब लिखते थे, जो लिखा वैसा उनके उनके जीवन में प्रत्यक्ष देख लो, उनका जीवन पहले लिखा जा चुका है तब वो कलम लिखती है, बड़ा इनके मन में इसीलिए यही शंके लिखित जमनिष्मित पर्व में आता है कि सुधन्वा जब ये अर्जुन ये पांडवों का राजस्व यज्ञ ये अश्वमेध यज्ञ और जब इनका अश्व गया विश्व विजय के लिए, तो राजा ताम्रध्वज ने पकड़ लिया उनके घोड़े को, उनके संसद ध्वज, उनके पुत्र का नाम एक का सुधन्वा था, और एक टाइम नियत कर दी गई इतने बजे सवेरे सब लोग रणक्षेत्र में जा पहुंचे, और जो न पहुंचे ठीक समय पर वो जलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया, ये इस प्रकार की मुनादी हो गई, तो पहुंच गए सुधन्वा के पहुंचने में देर हो गई, देर ही सकार हो गई, भी बड़े महत्व की चीज, देर हो गई, तो ये शंख लिखित थे उनके रोहित, तो राजा ने पूछा पिता ने इनसे कि महाराज क्या किया जाए, इन्होंने अपने मन में सोचा कि पूछता कैसे है, नियम सबके लिए एक सा होता है कि दो नियम होते हैं, एक के लिए कि एक रेप के लिए दूसरा, पूछते उन्हें क्या पूछने की आवश्यकता है, देर हो गई तो देर किया, देखो तो अपने यहाँ तय हो चुका, वो करो। तो राजा ने आदमी भेज दिया, दीवान साहब गए सुगनवा के पास कि आपको पेड़ की कढ़ाई में गिर। सुगनवा रास्ते में मिले, बड़ी बड़े संकोच के साथ मंत्री ने, सुगनवा 16 वर्ष का बच्चा, बड़ा सुकुमार, बड़ा वीर, बड़ा तेजस्वी, वर्चस्वी, बहुत बड़ा सात्विक गुण वाला, कैसे कहे पर राज आज्ञा थी, नियम था, कड़ाई तो नियम में होती है, कड़ाई तो उनका ठीक। देर हमको हुई, हमें जाना कि इतना इतना दुख जरूर है कि श्री कृष्ण के चरणों में मरते, मरने को जा ही रहे थे, कोई बात ही नहीं थी। विनोद हुआ वहाँ पर महाराज, उनके घर में जब वो जाने लगे, ये मरण का विनोद, पत्नी के पास गए, विवाह हुआ था, कुछ ही दिन हुए थे, तो जब माँ के पास गए, माँ ने तिलक कर दिया, जाओ बेटा या तो अर्जुन को जीत कर आए और नहीं तो आना नहीं, ये माँ ने आशीर्वाद दिया। बहन ने यही कहा, तिलक कर दिया, जाओ भैया या तो अर्जुन को जीत कर, जीतना ही तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रह जाना। पत्नी के पास गए तो वहाँ बड़ा विनोद या विनोद, ये क्षत्रियानी का विनोद देखिए, वो पत्नी बोली, सुहरिया की पत्नी, जवान लड़की अभी ब्याह होकर के आई है, वो बोली कि स्वामी उनके राज्य में एक व्रत था, एक पत्नी व्रत, ऐसा वो कड़ा नियम था कि राज्य में कोई भी दूसरी पत्नी नहीं कर सकता था मरने के बाद भी, एक पत्नी व्रत था। तो श्री कृष्ण ने जब ये बात कही वहीं पर, जब युद्ध क्षेत्र में सुधनिया के पीछे आए, तो अर्जुन जब हारने लगे तो सुधनिया ने कहा कि तुम अर्जुन जीत नहीं सकोगे, हो तो तुम बहुत बड़े, तो तुम्हारे सामने बालक हैं, पर यदि कुछ भी विजय की इच्छा हो तो अपने उस सार्थक याद करो जो महाभारत में थे, इसीलिए तो युद्ध में गए थे सुधनवा, याद करते भगवान आ गए, कृष्ण ने आकर के घोड़ों के लगाम संभाल ली। तब बोले वहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन से, कह रहे भैया हम तुम जीते कैसे, ये सब एक पत्नी करते हैं और हमने हजारों ब्याह किए, तुमने बहुत ब्याह किए, तुम्हारे हम इसी उनकी कैसे जीतेंगे। भगवान ने कहा एक पत्नी बरती रहे, एक पत्नी कहती है युद्ध में जाते समय कि स्वामी आज आपका एक पत्नी व्रत भंग होगा, व्रत भंग होगा। सुधनवा का कैसे भंग होगा, हमारा ऐसे पत्न हो, ऐसे भंग होगा कि आज आप श्री कृष्ण के चरणों में सोएंगे, मृत्यु होगी। तो श्री कृष्ण के चरणों में और नक्षत्र में जब आपका मरण होगा तो मृत्यु आपकी बढ़ेगी, आप मृत्यु के स्वामी हुए तो मुझको छोड़कर मृत्यु के स्वामी हो गए ना, तो आपका एक पत्नी वृद्ध भंग हो जाए। तो सुधनवा ने कहा कि हमारा ही नहीं भंग होगा, तुम्हारा पाती व्रति भंग होगा आज। तो उसने कहा हमारा पाती व्रत कैसे भंग होगा, इसलिए जब मैं मरूंगा तो तुम सती होगी, तुम तो रहोगी नहीं, सती होगी तो तुमको मोक्ष दर्ण करेगा, मोक्ष पुल्लिंग है, मुक्ति शिवलिंग है, तो तुम मोक्ष की पत्नी हो जाओगी, इसलिए तुम्हारा पार्थिव व्रत भंग हो। ये तो विनोद होते थे, जवान पति मरने को जा रहा है वहां पति पत्नी में ये विनोद होता, रोने को नहीं बैठता। तो जब ये जाने लगे तो रस्ते में दीवान मिले, कहा अच्छी बात, जब तेल के कढ़ाई के पास पहुंचे, खोल रहा है तेल, भट्टी जल रही नीचे, उन्होंने भगवान को याद, याद करके मन में सोचा कि जो भगवान इस तेल में है वही भगवान अग्नि है, वही भगवान मेरे में है, प्रभात की बात तो ऐसी है, अग्नि में अग्निपना भगवान है, सूर्य में सूर्यपना भगवान है, अग्नि में अग्निपना भगवान, तो अग्नि भी भगवान, तेल भी भगवान, भगवान तो भगवान है, भगवान का स्मरण करके और भगवान का नाम लेते हुए चुपचाप कराहे में जा रहे हैं। इनके लिए तेल शीतल है, मगर ये तेल भी दूसरे को बीचता उबल रहा है, फैल रहा है, और ये मेरे गंगा जी के जल में बैठे हैं, आराम से नाम जप कर रहे हैं। शंख लिखित जो थे ये ऐसे थे, बड़े कट्टर स्मृतिकार, जैसा मानो वैसा खुद करें और कराएं। तो वहां खबर पहुंची कि उस धनवा को तेल के कड़ाहे में डाल दिया गया नियमानुसार। कुछ देर के बाद फिर खबर आई कि ये तो जला नहीं। तो शंख लिखित दोनों पधारे, बोले क्या बात है, शायद राजा ने मालूम होता है कि गड़बड़ कर दी होगी, अपना बेटा है ना, तो तेल गर्म नहीं हुआ होगा, ऐसे रख दिया होगा, आँच नहीं दी होगी, कुछ न कुछ गड़बड़ है जरूर। तो ये पहुंचे दोनों वहां पर शंख लिखे, ये पहुंचे तो जा करके शंख ने देखा कि भाई आग तो जल रही है और तेल खोल भी रहा है, पर जलता कैसे नहीं। तो उन्होंने तेल की परीक्षा के लिए एक नारियल, जो कहते नारियल, वो तेल में डाला। तेल में नारियल के प्रति तेल तो खोल रहा था, बड़ा बड़ा गर्म से जल रहा था, नारियल फटा और फट के उछला तो शंख जी के यहाँ मस्तक में लग गया, वो खून आ गया। शंख जी ने राम राम क्या हो गया, हाथ मीडिया बोले बेटा बताओ क्या बात, इतना ये तेल गर्म है और मेरे को देखो लग गई और तुम नहीं जलते, तुम कर क्या रहे, बोले कुछ नहीं कर, मैं तो भगवान नारायण का नाम ले रहा हूँ, इतनी इच्छा अवश्य मन में मेरे हुई कि मरना तो है ही, मरने के लिए तो आया ही, तो हे श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में मरूं, ये मुझे अवसर दे दो, ये मैंने कहा। तो बोले इसी का प्रताप है, आज तक हम खाली स्मृतिकार थे, भक्त नहीं थे, आज हमने तुमसे ये पाठ भी सीखा। तो ऐसे शंख लिखित, तो इन्होंने स्वयं सोचा कि एक भाई के बगीचे में से फल ले लिया दूसरे भाई ने बिना कहे, तो इस क्रिया का नाम चोरी। तो चोरी मानते हैं, हम चोरी का दंड भोगे, हम चोरी मानते थे, सुनते उससे छूट जाए, दूसरों को दंड दिलवाए। तो शंख ने कहा उस लिखित से, जाओ भैया दंड ग्रहण करो। बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास आया, राजा से कहा कि भाई हमने चोरी की, हमको हमको दंड दो। महाराज क्या चोरी की, बोले भाई के बगीचे में से फल ले लिया। तो बोले भाई नाराज में नाराज क्यों हो, तुम सारा बगीचे हमारा, नाराज कौन सी बात। तब बोले फिर चोरी कैसे, बोले कैसे पूछने वाले तुम कौन, ये तो हम बता देंगे, कानून बनाने वाले हम बनाएंगे, तुम उसका पालन करो, कहो तुम्हारा ये काम है, तुम ये मत पूछोगे कि चोरी कैसे हुई, हम कहते हैं चोरी इसलिए चोरी है, जिसका निर्णय हम करेंगे, हम जानते चोरी क्या होती है, हमने बंटवारा होने के बाद बिना कहे भाई के बगीचे में से फल ले लिया, तो चोरी है, चोरी तो हमने की है, हम मानते चोरी है, तो बोले दंड दो, क्या दंड दो, मेरे हाथ कटवा दो, अपने आप खुद कहते हाथ कटवा दो, हाथ कटवा दिए। अब इनके बड़ी प्रसन्नता मन में है कि देखो हमने धर्म का पालन किया, हमारे हमारे धर्म की हमने रक्षा की, और भाई बड़ी कृतज्ञता भाई के प्रति कि उन्होंने संकेत याद दिला दिया, ये नहीं कि हाथ कट गए भाई पर नाराज हो, गाड़ी बके उनके दो कैसा दुष्ट है, हमको फांकी दे करके हाथ ही कटवा दिया है, क्या नहीं आया भाई के घर, बड़ी प्रसन्नता के साथ भाई बड़े प्रसन्न हुए, मन ही मन बड़े आशीर्वाद दिए, प्रसन्नता आ गई कि हम देखो दोनों भाई कैसे धर्म प्राण है, हमारा प्राण धर्म में बसता है। सवेरा हुआ, श्राद्ध था, तीन श्राद्ध होता था, तर्पण रोज, तो भाई से कहा शंकर ने गिर जाओ तर्पण करो, अब हाथ कटे हुए तो तर्पण अंजलि तो है ही नहीं, कहाँ से गए, गए साहब नदी में, भाई क्या गया है नदी में, हाथ डाले डाले कटे हाथ, हाथ आ गए, हाथ आ गए, निर्णय तर्पण करके आ गए, ये महाभारत की कथा। तो एक ये जमाना था जिस जमाने में इस चीज को भी चोरी माना जाता था, और जब जमाना पलटा, वृत्ति हमारी तवोमुखी हुई, आज ये जमाना है कि